नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कुरेदने वाले हैं जिसने मतलब पिछले 500 सालों से हमारी दुनिया की शक्ल बदल दी है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं प्रोटेस्टेंटिज्म की, और इसके लिए हमारे हाथ में जो किताब है वो है मार्क ए नोल की प्रोटेस्टेंटिज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब कई लोग शायद सोचें कि ये तो इतिहास का, धर्म का, यूरोप का कोई पुराना टॉपिक है।
हाँ, आज इससे क्या लेना देना।
एग्जैक्टली।
और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नोल हमें बताते हैं कि ये कहानी जर्मनी में शुरू जरूर हुई थी, लेकिन आज इसका असली एक्शन, इसकी जो ऊर्जा है, वो लागोस, साओ पाओलो और सियोल की गलियों में है।
सच में?
हाँ, आज दुनिया के 2/3 से ज्यादा प्रोटेस्टेंट यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर रहते हैं।
अरे वाह, ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। मतलब हम जिसे एक पश्चिमी विचार समझते हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र ही बदल चुका है।
बिल्कुल।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि ये आंदोलन क्या है और आज ये इतना जरूरी क्यों है। तो इस किताब के जो लेखक हैं मार्क ए नोल, वो इस विषय पर बात करने के लिए सही इंसान क्यों हैं?
देखिए, मार्क नोल ईसाई धर्म के इतिहास पर उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े जानकारों में से एक माने जाते हैं। वो नोट्री डेम और वीटन कॉलेज जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुकी हैं, तो उनकी अकादमिक पकड़ वो बहुत मजबूत है।
लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो सिर्फ उनकी डिग्रियां नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। खास बात यह है कि वो खुद इसी परंपरा के अंदर से आती हैं। वो एक इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट हैं।
अच्छा।
उन्होंने द स्कैंडल ऑफ द इवेंजेलिकल माइंड जैसी एक बहुत मशहूर किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने ही समुदाय की मतलब बौद्धिक कमियों की खुलकर आलोचना की।
तो वो एक इनसाइडर हैं जो बाहर वाले की तरह निष्पक्ष होके भी देख सकता है। पर इसमें एक सवाल उठता है, क्या एक अंदर का आदमी होने से उनका नजरिया थोड़ा पक्षपाती नहीं हो सकता?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन नोल की खूबी यही है कि वो सहानुभूति और अकादमिक विश्लेषण के बीच एक एक बैलेंस बनाती है। वो मानती है कि इस आंदोलन में कई कमियां हैं, लेकिन साथ ही इसकी ताकत को भी समझती हैं।
अच्छा।
यही अंदर और बाहर का जो मिला जुला नजरिया है, वो इस किताब को इतना भरोसेमंद बनाता है। वो किसी की तरफदारी नहीं कर रही, बस कहानी बता रही हैं।
तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में? इसका सबसे बड़ा आइडिया क्या है?
देखिए, इस किताब का दिल, या कह सकते हैं जो सेंट्रल आइडिया है, वो एक बड़े विरोधाभास में, एक पैराडॉक्स में छिपा है।
पैराडॉक्स।
हाँ, प्रोटेस्टेंटिज्म का सबसे बड़ा और अकेला नियम है सोला स्क्रिप्चुरा, यानी सिर्फ बाइबल ही असली अथॉरिटी है।
मतलब चर्च, पोप या कोई पादरी जो कहे, वो उतना मायने नहीं रखता। असली बात वही है जो पवित्र किताब में लिखी है।
बिल्कुल। लेकिन नोल कहती हैं कि यही नियम इसके फैलने और इसके टूटने दोनों का कारण है।
एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? जो चीज जोड़ती है वही तोड़ती भी है।
हाँ, यही तो मजेदार बात है। नोल कहती हैं कि बाइबल प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए एक संविधान की तरह है, सब उसी को मानते हैं।
ठीक है,
लेकिन ये एक ऐसा संविधान है जिसका कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कह सके कि नहीं, इसका सही मतलब तो ये है।
अच्छा।
तो इसलिए हर कोई इसका अपना मतलब निकाल सकता है, और जब मतभेद बढ़ते हैं तो लोग अपना नया चर्च बना लेते हैं, और इसी से हजारों अलग अलग संप्रदाय बन गए।
ठीक, यही बात।
और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी ताकत भी।
ताकत कैसे?
क्योंकि ये आज़ादी इसे अलग अलग संस्कृतियों में ढलने और जड़े जमाने की ताकत देती है। यही वजह है कि जर्मनी का लूथरन चर्च और नाइजीरिया का पेंटेकोस्टल चर्च दोनों ही खुद को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये किताब इसी विरोधाभास की कहानी है।
चलिए अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। नोल इस कहानी को शुरू कहां से करती हैं? जाहिर है मार्टिन लूथर से।
हाँ, कहानी 16वीं सदी के जर्मनी से शुरू होती है। उस वक्त का यूरोप मतलब एक बेचैन जगह थी। चर्च में भ्रष्टाचार था और आम आदमी डरा हुआ था कि मरने के बाद उसका क्या होगा। इसी माहौल में मार्टिन लूथर नाम के एक भिक्षु ने चर्च की कुछ प्रथाओं पर सवाल उठाए।
और उनका सबसे बड़ा आइडिया था सोला फाइड, यानी सिर्फ विश्वास से ही मोक्ष। ये इतना क्रांतिकारी क्यों था उस वक्त?
क्योंकि इसने ईश्वर और इंसान के बीच का पूरा रिश्ता ही बदल दिया। तब तक क्या माना जाता था कि मोक्ष पाने के लिए आपको अच्छे काम करने होंगे, तीर्थ यात्रा करनी होगी, दान देना होगा।
एक तरह की सौदेबाजी थी।
हाँ, एक तरह की डील। लूथर ने कहा, नहीं, मोक्ष कमाया नहीं जा सकता, ये ईश्वर का मुफ्त का तोहफा है जिसे सिर्फ विश्वास से पाया जा सकता है। इसने आम आदमी को धार्मिक संस्थानों के बोध से मतलब आजाद कर दिया।
और लूथर के बाद आए जॉन कैल्विन, जिन्होंने इन बिखरे हुए विचारों को एक सिस्टमैटिक रूप दिया।
सही कहा, कैल्विन ने जिनेवा में एक ऐसा समाज बनाया जो प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों पर आधारित था। उनका प्रभाव आज भी दुनिया भर के प्रेस्बिटेरियन और रिफॉर्म्ड चर्चों में दिखता है।
लेकिन कहानी सिर्फ इन दो बड़े नामों तक सीमित नहीं थी।
आप उन लोगों की बात कर रही हैं जिन्हें रेडिकल रेफॉर्मेशन कहा जाता है?
हाँ, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। ये वो लोग थे जैसे एनाबैप्टिस्ट, जिन्हें लूथर और कैल्विन दोनों ही खतरनाक मानते थे।
अच्छा, उनका कहना था कि चर्च और राज को पूरी तरह अलग होना चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत चुनाव का मामला है, जन्म से मिली हुई पहचान नहीं।
इसीलिए वो बच्चों के बपतिस्मा का विरोध करते थे और कहते थे कि बपतिस्मा तभी होना चाहिए जब कोई वयस्क अपनी मर्जी से फैसला ले।
बिल्कुल, और उस जमाने में ये विचार इतना रेडिकल था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ने मिलकर उन पर भयानक अत्याचार किए।
लेकिन सदियों बाद उनके यही विचार धार्मिक स्वतंत्रता, चर्च और राज्य का अलगाव अमेरिका जैसे देशों की नींव बने।
हाँ, विडंबना देखिए।
तो ये तो हुई शुरुआत की चिंगारी
जी।
लेकिन ये आग पूरी दुनिया में फैली कैसे?
अगले कुछ अध्यायों में नोल इसी विस्तार की कहानी बताती हैं। पहले तो यूरोप में ही धार्मिक युद्ध हुए, फिर यह आंदोलन उपनिवेशवाद के साथ उत्तरी अमेरिका और दुनिया के दूसरे कोनों में पहुंचा। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया जब धर्म दिमाग से ज्यादा दिल का मामला बनने लगा।
आप पिएटिज्म और रिवाइवल की बात कर रही हैं?
हाँ, 18वीं सदी तक प्रोटेस्टेंटिज्म कई जगहों पर बहुत ठंडा, बौद्धिक और सरकारी सा हो गया था। इसके जवाब में पिएटिज्म जैसा आंदोलन उठा जिसने व्यक्तिगत भावनात्मक अनुभव पर जोर दिया। इसने कहा कि सिर्फ सिद्धांतों को जानना काफी नहीं है, धर्म को महसूस करना जरूरी है।
और जॉन वेस्ली और मेथोडिस्ट आंदोलन इसी की पैदाइशें हैं ना?
बिल्कुल।
और फिर आया आधुनिक युग, डार्विन, विज्ञान, नई खोजें, जिसने बाइबल की अथॉरिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए।
ये प्रोटेस्टेंट दुनिया के लिए एक भूकंप जैसा था। छठे अध्याय में नॉल बताती हैं कि इस चुनौती के जवाब में प्रोटेस्टेंट दो खेमों में बट गए।
ओके।
एक तरफ लिबरल या मॉडर्निस्ट थे जो कहते थे कि हमें अपने धर्म को नए जमाने के हिसाब से बदलना होगा। दूसरी तरफ फंडामेंटलिस्ट थे जिन्होंने कहा नहीं, बाइबल का हर शब्द सच है और हम एक इंच भी नहीं झुकेंगे।
और ये लड़ाई तो आज भी जारी है।
हाँ बिल्कुल, और ये सब हमें किताब के सबसे हैरान करने वाले हिस्से तक ले आता है, आज की दुनिया।
सातवां अध्याय
जी, जो बताता है कि 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। प्रोटेस्टेंटिज्म का केंद्र पश्चिम से खिसक कर ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में चला गया, और इस बदलाव का सबसे बड़ा इंजन बना पेंटेकोस्टलिज्म,
एक ऐसा आंदोलन जो पवित्र आत्मा के सीधे अनुभव, चमत्कारों और जोशीली पूजा पर जोर देता है।
बिल्कुल, यह आंदोलन बहुत लचीला है। ये लोगों को सशक्त महसूस कराता है और स्थानीय संस्कृतियों में बहुत आसानी से ढल जाता है।
अच्छा,
आज लागोस के एक विशाल चर्च में एक बिल्कुल नए रूप में धधक रही है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े आइडियाज निकालने हो तो वो क्या होंगे? मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है बाइबल का दोधारी तलवार होना। यही वो चीज है जो सबको जोड़ती है और यही वो चीज है जिसके कारण सब अलग भी हो जाते हैं।
ये को इसका डीएनए है ना? और दूसरा बड़ा आइडिया हमारी दुनिया की तस्वीर ही बदल देता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ग्लोबल साउथ में शिफ्ट होना।
हाँ,
हम प्रोटेस्टेंटिज्म को एक पश्चिमी यूरोपियन चीज समझते हैं, लेकिन नोल कहती हैं कि ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में ईसाई धर्म से जुड़े बड़े वैश्विक फैसले शिकागो या बर्लिन में नहीं
बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लिए जाएंगे।
सही का, ये एक जबरदस्त पावर शिफ्ट है।
और तीसरा संदेश जो मुझे लगता है वो है दिल के धर्म का महत्व।
बिल्कुल,
चाहे वो पिएटिज्म हो या आज का पेंटेकोस्टलिज्म, ये आंदोलन तब तब ताकतवर हुआ है जब इसने सिर्फ सिद्धांतों के बजाय व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव पर जोर दिया है।
ये सिर्फ मानने का नहीं, महसूस करने का धर्म है। मैं इसमें एक और जोड़ूंगी, चर्च और राज्य के बीच का तनाव।
अच्छा हाँ,
क्या धर्म को सरकार का हिस्सा होना चाहिए या उससे पूरी तरह आजाद? ये सवाल लूथर के जमाने से लेकर आज तक प्रोटेस्टेंटिज्म के केंद्र में रहा है और दुनिया भर की राजनीति को प्रभावित करता है।
किताब में कुछ विचार ऐसे हैं जो वाकई दिमाग में अटक जाते हैं। कुछ ऐसे खास विचारों पर बात करें?
जरूर। पहला तो वही केंद्रीय विरोधाभास है, लेखक के शब्दों को अपने शब्दों में कहूं तो, प्रोटेस्टेंटिज्म की सबसे बड़ी पहेली ये है कि इसका सबसे बड़ा अधिकार यानी बाइबल ही इसके जुड़ने का कारण भी है और इसके बिखरने का लाइसेंस भी। यही इसकी ताकत भी है और इसका सिर दर्द भी।
ये लाइन पूरी किताब का निचोड़ है। ये समझाती है कि आंदोलन इतना बिखरावा होने के बावजूद इतना जिंदा दिल क्यों है।
दूसरा विचार आज की हकीकत पर है। 21वीं सदी में प्रोटेस्टेंटिज्म को समझना है तो जनेबा या लंदन की तरफ मत देखो, लागोस, सियोल और साओ पाउलो की तरफ देखो। यूरोप में जन्मा यह आंदोलन अब अपनी ऊर्जा और अपना भविष्य ग्लोबल साउथ में ढूंढ चुका है।
ये हमारे पश्चिमी केंद्रित नजरे को सीधी चुनौती है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया बदल रही है और धर्म भी।
और तीसरा जो इसके बिल्कुल दिल में है, सिर्फ विश्वास से मोक्ष का सिद्धांत इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि इसने ईश्वर और इंसान के रिश्ते को नए सिरे से गढ़ दिया। इसने मोक्ष पाने की चिंता भरी कोशिशों की जगह ईश्वर की कृपा के सुकून भरे भरोसे को दे दी।
ये बताता है कि ये सिर्फ एक किताबी बहस नहीं थी, इसने लाखों लोगों के लिए महसूस करने का तरीका बदल दिया कि वो कौन है और ईश्वर की नज़र में उनकी क्या जगह है।
सही, इसने व्यक्ति को धार्मिक संस्थानों के बजाय सीधे ईश्वर से जोड़ा।
तो ये सब ऐतिहासिक बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ती हैं? एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है?
इतने बड़े और प्रभावशाली क्यों हैं?
बिल्कुल, तो ये किताब हमें उस खबर के पीछे की गहरी सामाजिक और धार्मिक परतें समझाती है।
और मुझे लगता है ये हमें आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाता है।
कैसे?
ये देखना कि एक ही किताब से कितने अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे के विरोधी विचार पैदा हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी टेक्स्ट, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या साहित्यिक, अपने आप में कुछ नहीं कहता। हम सब उसे अपने नजरिए, अपनी संस्कृति और अपने अनुभव के चश्मे से पढ़ते हैं।
बिल्कुल सही।
और ये हमें बेहतर संवाद के लिए भी तैयार करता है। जब हम प्रोटेस्टेंट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है।
सही।
ये किताब उस तस्वीर को तोड़ती है और हमें दिखाती है कि इसमें कितनी विविधता है। एक जर्मन लूथरन और एक नाइजीरियन पेंटिकॉस्टल, दोनों प्रोटेस्टेंट हैं पर उनकी दुनिया कितनी अलग है। ये समझ हमें दूसरों के बारे में जल्दबाजी में राय बनाने से रोकती है।
तो अंत में इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि प्रोटेस्टेंटिज्म को एक धर्म या संस्था के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेचैन, गतिशील और हमेशा बदलते रहने वाले आंदोलन के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है।
एक आंदोलन,
हाँ, इसकी टूटने की आदत और दुनिया भर में फैलने की क्षमता, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक ऐसा आंदोलन है जो कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा खुद को सुधारने और फिर से खोजने की कोशिश में लगा रहता है।
और मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि इसका भविष्य कितना गैर पश्चिमी है। हम अक्सर दुनिया के इतिहास को यूरोप और अमेरिका के नजरिए से देखते हैं।
हाँ, देखते हैं।
ये किताब उस नजरिए को पलट देती है। ये बताती है कि विचारों की यात्रा कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। जो विचार जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में शुरू हुआ, आज उसकी सबसे ज्यादा ऊर्जावान अभिव्यक्ति शायद अफ्रीका के किसी शहर में हो रही है। ये सोचना ही दिमाग को खोल देता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।